कुंभ पंडित तिलोकतो बहारी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूमिना अतो कवृक्ष पल्लवीतापस्थिते प्रभालु बालु पल्लव प्रभालु वन्दितो वराभयकुलसुतरे भूत सम्पदालये सदा परिसीमनन्तरं गमङ्गल प्रसङ्गमं गुरुमां सति भ्रमं समं भ्रमं गन्तबानुपासन निरन्तरं वसीकृता प्रतिनिनन्दने हरि सुवर्ण चम्पक सञ्चर मधोन्मदाति यौवने प्रबोधमानमण्डिते क्रियाङ्गाभिरञ्जिते कलाविलासखण्डिते अनन्दभङ्गकुञ्जनाच कामके गोविन्दे भूषिते प्रभूप्रसाद कुम्भ कुम्भ कुम्भि कुम्भदूषणि प्रतस्थवन्तहास्यपूर्णपौर्णचौकधारि
राजे सरी सदा दिने सदा दिने नमः इति ఏకైనం అద్భుతం భాను కరోతు సంతతం జనం కృపా కటాక్ష భాజనం భవేత్ తథైవ సంచిత శ్రీ రూప కర్మనాశనం భవేత్ తదా ప్రజేంద్ర సోను మండల ప్రవీణ నందనందనాష్ట छोटा वाला नमामि नंदनंदनम ये मुख कर लेना चाहिए। अनुमति सखी पुत्र मत्र स्वरूपम रूपम तस्या ब्रजवरी पुरम मातुरिंगोस्तवाकिम राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माधवासम प्राप्तो यश्च प्रसिद्ध कृपया श्री गुरु तं नतोऽस्मि पंचा वनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्तिजे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरे श्री हा देवी काकू भरगत गदयाज्ञवाचन याति निपत्त भूमि दंडवत उद्भटार्ति अज्ञा प्रसादमबुधश्च जनश्च कृत्वा गंधर्विके तव गणे गणनं विधे अंगश्यामलिंछताभिरभितो मन्दे कृतेन्दे वरं जट्टञ्जागुदरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्य महेश्वरीं सखिपते जस्तोतयन्ति प्रिया नरं राधाकन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामु तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं माम चरणान्तिः यत किं करेषु वौषा खलु काकुवानि नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौलि यस्यापदार्थनिधे विशुभानुजाय ततके विकुञ्ज भवनाङ्गनमार्जय भजामि राधां मरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणापराद्रं ततो मम नास्ति गतिर्नस्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्दलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाद्धावमानं परामृतमत्यन्ततोच्चगोप्य नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्दलं गोकुले भ्राजमान। कल वर्णन किया था जो कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा मैया दौड़ रही है। Yesterday we told that Krishna jumped from the Udukhal and began to run on the road. Yashoda Ma running more fastly than Krishna and tried to take up Krishna. We left that thing yesterday. Now we are coming to the Digdarshini Tika of Sanatana Goswami. Sanatana Goswami ki Digdarshini Tika mein hum log ab aa rahe hain. करें हैं नमामि ईश्वर क सौनकादि ऋषि और नारद जी के संवाद में कौन मुनि सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं नमामि ईश्वर। किसको प्रणाम कर रहे हैं? ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने से समझो ये दास्य भक्ति है। दास लोग ही प्रणाम करते हैं। सखा नहीं प्रणाम करते, मैया नहीं प्रणाम करेगी, गोपियां नहीं प्रणाम करेगी। सत्यव्रत मुनि इज डूइंग प्रणाम टू कृष्ण टू ईश्वर। सखा डोनट डू प्रणाम, सखी डोंट, यशोदा मैया ऑल्सो डोंट डू प्रणाम। ओनली दास्य दे डू प्रणाम। इसलिए कह रहे हैं जैसे इससे सूचित होता है कि ये दास भक्त थे, किंतु धीरे धीरे कृष्ण के इस स्तव को करते 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 उनमें भक्ति बढ़ती गई और भक्ति बढ़ते 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 धीरे 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 अग्रसर हो गई। और यहां तक कि मधुर रस के प्रति भी लोभ की संभावना हो गई, लोभ हुआ। इसलिए यहां पर नमामि ईश्वरम दिग्दर्शनी टीका है। सब तो हम नहीं कह सकते, सनातन गोस्वामी जी दंड से कह रहे हैं, मैं सब नहीं वर्णन कर सकता। तो दिग्दर्शन के रूप में दिग्दर्शन थोड़ा सा मैं वर्णन कर रहा हूं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? उनके तीन उद्देश्य हैं। ऐसा सुंदर श्लोक जो आज तक कभी नहीं हुआ, उस समय की बात, उस समय कल्पना नहीं की जा सकती। नमो राधिकाय, केवल दास्य भक्ति की प्रधानता और नहीं तो शांत रस की प्रधानता। सत्ययुग में शांति ही रस प्रधान रहता है। सनक सनंदन सनातन इत्यादि वो रहते हैं सत्ययुग में, इसलिए इन सत्ययुग वाली शांत रस इज प्रोमिनेंट, मधुर रस नॉट इज प्रोमिनेंट। तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। कोई चीज काम आरंभ के पहले में प्रणाम करना चाहिए। कोई भी चीज हम लोग यहाँ से चलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो प्रणाम करते हैं। कोई भी काम हो आरंभ करो कहाँ से? प्रणाम करो। किसको? गुरु जी को और अपने इष्ट वस्तु। गुरु जी तो ही है, हरि गुरु वैष्णव, तीनों को प्रणाम करो। कार्य वो निश्चित रूप में होता है। इसलिए भगवान के प्रति दास्य भक्ति का प्रकाश यहाँ पर होता है। पहले ही नमस्कार कर रहे हैं टीकाकार सनातन गोस्वामी। पहले कह रहे हैं जैसे ये जिसको प्रणाम कर रहे हैं है कौन? तो होम यू आर डूइंग नमस्कार, हु इज ही? तत्व, उस तत्व को जानना चाहिए। भक्त के हृदय में तत्व का होना चाहिए। वो एक छोटा सा बालक है, निर्बोध, या है कौन? अरे वो छोटा सा बालक नहीं है, वो ईश्वरों का भी, ईश्वर परमेश्वर से भी बढ़ करके है। उसको प्रणाम कर रहे हैं। यदि उसकी हम वंदना करेंगे तो हमारा मंगलाचरण हो जाएगा, हमारा काम भी शुद्ध हो जाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान है। एक विचार करना चाहिए, कृष्ण को यदि नर बालक हम यदि रखें, केवल नर बालक अबोध शिशु जैसा, तो यह भक्ति रस नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे तो सभी लोग अपने बच्चे को प्यार करते हैं, ऐसा कौन है जो नहीं करता? इफ वी नो कृष्ण इज ओनली ए वेरी लिटिल चाइल्ड, ही डज नॉट नो एनीथिंग, एज ए चाइल्ड ही कैन नॉट मूव, ही कैन नॉट थिंक एनीथिंग, देन देयर विल बी नो भक्ति। व्हाट टू टेल अबाउट भक्ति रस? इसलिए कृष्ण में ऐश्वर्य सब समय रहेगा। यदि कृष्ण को ऐश्वर्य निकाल दो तो फिर माधुर्य नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। ऐश्वर्य सब समय रहेगा, माधुर्य जितना बढ़ता जाएगा ऐश्वर्य भी बढ़ता जाएगा, किंतु माधुर्य का इतना अधिक परिमाण होगा कि ऐश्वर्य थक जाएगा। तब तो वो ठीक है, तब उसमें रस होगा, अन्यथा वो रस नहीं होगा। इति वनली थिंक कृष्ण इज वनली ए चाइल्ड एंड ही इज इग्नोरेंट, ही डज नॉट नो एनीथिंग, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, देन देयर विल बी नो भक्ति, बट टू भक्ति रस एंड प्रेम एंड महाभाव एंड ऑल अदर थिंग्स। As much as frame develops, ashwarj also develops, but it is hidden by madhurya. इसलिए ऐश्वर्य की सप्तमी स्थिति होगी। ब्रज में भी उन्होंने बीच बीच में ऐश्वर्य दिखलाया है। ब्रज में जो कुछ रास भी ऐश्वर्य में है। गिरिराज का गोवर्धन का धारण करना, जो सुधा मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखलाना, अगासुर बकासुर पुतना के मारने में भी ऐश्वर्य है। एवरीवेयर देयर इज ऐश्वर्य, सब जगह ऐश्वर्य है, किंतु होने पर भी उन भक्तों को उस ऐश्वर्य से कोई सरोकार नहीं रहा। उसके उनके मन में ये नहीं भावना हुई कि ये कृष्ण भगवान है। उनके प्रति उनकी प्रीति बढ़ती गई, ऐसा होना चाहिए। और यदि किसी को माधुर्य नरलीला के लीला में भी यदि ऐश्वर्य की ही अधिक अनुभूति होती है तो वो ऐश्वर्य हो गया दास इत्यादि हो गया। इसलिए इसको समझो, ऐश्वर्य रहे न रहे किंतु नरलीला के अनुरूप उनकी लीला हो रही है तब तो वो माधुर्य होगा। और यदि माधुर्य ऐश्वर्य माने अलौकिक उनकी लीलाएं हो रही हैं जो इस लीला में देखी नहीं जाती है मनुष्यों में, अलौकिक हो तब उसको ऐश्वर्य लीला, उसमें थोड़ा सा माधुर्य भी मिला रहे तो कोई हर्ज नहीं, तभी वो माधुर्य ऐश्वर्य ही कहलाएगा। हम लोग पहले ऐसा समझते थे जब एकदम ऐश्वर्य नहीं रहेगा नरलीला का अनुरूप हो जाएगा तब माधुर्य, किंतु यह गलत है। उसमें माधुर्य सब समय कृष्ण में रहेगी भगवत्ता। इसलिए कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह रस स्वरूप सर्वशक्तिमान समस्त ईश्वरों के ईश्वर समस्त कारणों के कारण रहते हुए भी एक ही समय में नरलीलासन रूप सब लीलाएं होती हैं। वो ऐसे कृष्ण यहाँ पर हैं। इसलिए किसको नमस्कार कर रहे हो तो पहले कहा जाए ईश्वर। ईश्वर कहने से क्या, जगत के ये विश्व विश्व ब्रह्मांड के केवल कृष्ण एकमात्र ईश्वर है। ईश्वर माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व कर्तुम। ईश्वर किसको कहते हैं, ही कैन डू एवरीथिंग, ही कैन डू व्हाट कैन नेवर बी डन, ही कैन डू अन्यथा एवरीथिंग ही कैन डू एंड ही इज सर्वशक्तिमान Then he is almighty, एकमात्र ईश्वर। अथवा ईश्वर माने हमारे ईश्वर, कुछ निकटतम आराध्य दास के भक्ति आ रहे, केवल हमारे ईश्वर है। He is only my master, ईश्वर। अथवा जिन्हें सर्व ये सर्वशक्तिमान जगत के ईश्वर और हमारे ईश्वर, तीन अर्थ। पहले श्लोक में सर्वशक्तिमान ये ईश्वर नंद बाबा के भवन में, यशोदा जी के भवन में, यशोदा जी के मार के भय से भाग रहे हैं। ये कौन है, सर्वशक्तिमान ईश्वर हो इस रनिंग बाई यशोदा मां hearing from Yashoda Maiya. Who is he? He is Sarva Shaktiman, Almighty. Why is telling so? वो करें इसलिए स्तुति शक्ति लाभ करने के लिए. हम लोग स्तुति करते हैं यदि हमारी वाणी, यदि हमारा मन और हृदय में एक में मिल करके यदि वो साउंड निकले तब तो स्तुति होगी. हम जो कह रहे हैं हमारा मन और हृदय उसमें नहीं मिल रहा है तो स्तुति नहीं होगी. क्या होगा? निकल रहा है, इधर मन इधर में है, उधर कर रहे हैं नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, और इधर में जा रहे हैं, कोई उधर में काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है. जिस समय में ये वाणी और मन हृदय माने ये विचार करना तत्व इत्यादि और हृदय प्रेम और वाणी ये तीनों एक साथ में मिल जाएंगे, देखो जो कैसा रंग वाला हृदय द्रवित हो जाएगा, उनकी लीलाओं का स्मरण करके रोमांच हो जाए. इसलिए सौ स्तुति करने की चेष्टा करो केवल उच्चारण में. हाँ धीरे 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 होगा कि उच्चारण करते करते वैष्णव के संग में ऐसा हो जाएगा, किंतु चेष्टा करनी चाहिए तीनों को मिला करके. इसलिए स्तुति की शक्ति लाभ कहाँ से आएगी, ये तीनों कैसे होगा? एक, जब तक उनकी सर्वशक्तिमान कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक ये तीन चीजें नहीं मिलेंगी. इसलिए हृदय में ऐसी भावना रख करके वो स्तुति करने की शक्ति हमें दे. दिस पावर विल कम दैट अवर हार्ट माइंड एंड अटरिंग कृष्ण थ्री थिंग्स विल बी एज ए वन. देन टियर विल कम, हार्ट विल बी मेल्टेड एंड एवरीथिंग, बट इट विल कम बाई द मर्सी ऑफ कृष्ण. कृष्ण की कृपा से ही ऐसा होगा. इसलिए ऐसे करो उनको प्रार्थना जो कृष्ण एकदम द्रवित हो जाए और वो अपनी कृपा शक्ति हमारे ऊपर में दे कि हम उनकी स्तुति लाभ कर सके. इसलिए ये पहला है नमामि ईश्वरम, वो हमको स्तुति की शक्ति दें क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है. और द्वितीय, जगत के एकमात्र ईश्वर है अर्थात तो जगत के परम वंदनीय है, जगतवर के विश्व के, और उसमें हम सबसे निम्न कोटि के हैं. मैं सबसे हीन हूं, आई एम रेटेड ऑफ ऑल इन होल वर्ल्ड, नन इज दुराचारी लाइक मी. हमारे समान और दीनहीन दुराचारी नहीं है कोई. जब ऐसी भावना आएगी तब वो जगत के ईश्वर और इसके बाद में हमारे लिए हमारे ईश्वर है. कुछ ममता आई, अब जगत के वंदनीय है उसमें ममता नहीं है उतनी. सर्वशक्तिमान है तो भी हमारी ममता नहीं, किंतु हमारे प्रभु हैं कृष्ण. ये जो जो दौड़ रहे हैं यशोदा माँ आगे पीछे दौड़ रही है कृष्ण को पकड़ने के लिए, ये हमारे प्रभु हैं. यही सर्वशक्ति देने वाले हैं, स्तुति कराने वाले भी, वो शक्ति देने वाले भी हैं. ये जगत के प्रभु हैं, हमारे भी प्रभु. ये है मंगलाचरण. मंगलाचरण के द्वारा स्तुति शक्ति आएगी, हृदय में भक्ति आएगी, प्रभु भी प्रसन्न होंगे इस सबको सुन करके. इसलिए ये तत्व का बतलाया गया. अब और इस तत्व को खुल करके ये बतला रहे हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम. वो जो ईश्वर है निराकार नहीं है केवल, अरे ये सामने सचित आनंद रूप में यही भाग रहा है, यही भाग रहा है. संधनी शक्ति के अतिशास्त्री देवता हैं, ज्ञान भाव और रस के मूल मूर्तिमान ये रूप हैं, और आनंदमयम ब्रह्म है. इसी को सूतियों में, वेदों में, श्रीमद् भागवत में, पुराणों में, शास्त्रों में इसी की ही प्रतिष्ठा है. यही सबके प्रतिपाद्य विषय है, ये कृष्ण ही, ये इनका तत्व है. ये छोटा सा शिशु होकर के भाग रहा है. दिस इज वेरी लिटिल बॉय बेबी रनिंग in Gokul. But yet he is Satchit Ananda. कभी भी उसकी सत्ता का लोप नहीं होगा, मरेगा नहीं, सब समय नित्य वर्तमान है और ज्ञान पूर्ण है। उसको कभी अज्ञान, उस अवस्था में भी अज्ञान नहीं है। जो भाग रहा मैया से वो तो प्रेम से, भय से नहीं, और वो आनंदमय है, रो रहा है। कोई आदमी रो रहा है तो उसमें आनंद रहेगा। इफ एनी वन इज वेटिंग वट इज आनंद देयर, बट इज स्टिल देयर इज आनंद, उसमें आनंद है। इसलिए सच्चिदा आनंद रूपम, इसके व्याख्या हम लोगों ने कुछ दिन पहले चैतन्य चैतन्यमृत में किया है। ये जो सर्व शक्तिमान ईश्वर हैं और सच्चिदा आनंद स्वरूप ये हैं, और देखो तो बड़ी विचित्र लीला। वृद्ध धर्मम तस्मिन् न चित्रम, वृद्ध धर्म अभी सच्चिदानंद स्वरूप सबके प्रभु रस स्वरूप हैं, और यशोदा मैया के डर के मारे दुखल से लंफ देकर के और भाग रहे हैं। यही रसिक से खरता है, यह रसिकता है, से खरता तो पीछे आएगी, यह रसिकता है कृष्ण की। दोनों अपने रसास्वादन कर रहे हैं, यशोदा जी को भी रसास्वादन करा रहे हैं दोनों। इसलिए यशोदा धियो धियः उलुखलात धावमानम, यशोदा जी के भय से ये बाल्य क्रीड़ा कर रहे हैं सहज रूप, कुछ अभी पहने हुए नहीं है, कमर में छोटी सी करधनी पड़ी हुई है। अच्छे भाग रहा होगा तो कैसे भाग रहा होगा देखो कल्पना करते, छोटा सा बच्चा, ये बच्ची श्यामला की बेटी दौड़ती है बीच में, सबको आकर्षण कर ले, वो कैसा होगा, किस रूप में भाग रहा होगा, उसको चलने की भंगी कैसे होगी, भागने की भंगी कैसी होगी, देखो विचार करो। तो यही सब स्मरण किया जाता है, किस पोज में भाग रहा होगा, थासा कांप भी रहा होगा, कभी इधर धर गिरा, अब गिरा, अब गिरा, ऐसा भी हो रहा होगा, इधर में देख रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, देखो तो कैसी भंगी। इस प्रकार से गोकुल में विराजमान सुशोभित हो रहा है, सबके आकर्षण हृदय को कर रहा है ये कृष्ण। उस समय में लसत कुंडलम, कुंडल झलझल करके हिलते हैं, ये मुख की शोभा हुई। लसत कुंडलम, कैसा कुंडल, मकर कुंडल, मकर माने क्या होता है, मकर कुंडल,
मकर आकृति कुंडल,
मगरमच्छ, मगरमच्छ ना कि मछली, किंतु देखते हैं कि मछली को ही अधिक लगाया जाता है, कुंडल कुंडल बनाते हैं ना, मछली काम सूचक प्रेम सूचक है, कामुक है, वो गालों को चुमती है कृष्ण के, मगर खा जाएगा इसलिए ये सब चीजें बहुत से इसके अर्थ हैं। वैसा भी बनता है, बिच्छू जैसा बनता है मुकुट। तो यहाँ पर मकर कुंडल मछली की भांति, लाइक फिश ए कुंडल इज खिल रहा है। आज इसको ऐसा मत समझो, ये आभूषण साधारण नहीं। जो सुधा मैया का जो सौभाग्य है, गोपियों का जो सौभाग्य है, जो नारद इत्यादि ब्रह्मा का सौभाग्य नहीं है कृष्ण के गंड चुंबन करने का, यशोदा मैया प्यार से उनका मुख चुंबन करती हैं, और ये निरंतर दिन रात वहीं पर चुंबन करता है, कृष्ण के मुखारविंद को, नॉट ऑर्डिनरी ऑर्नामेंट, ऑल दी ऑर्नामेंट्स आर बल्लेव प्रभु, ऑल वर ऑल दी क्लोथिंग्स एंड ऑर्नामेंट्स स्टेज मुकुट आसन बसन भूषण एवरीथिंग सब कुछ बल्लेव प्रभु की है। तो यहाँ पर उस रूप में तो बतला नहीं रहे हैं किंतु है ये सब उन्हीं का कार्य, सब चीन में है। हमारा कुंडल हमारा मुख नहीं चुंबन कर सकता किंतु उनका कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण का इतना रूप, इतना सुंदर रूप, और इसको ऐसा सौभाग्य हो गया कि इनका मुख चुंबन करता है। अरे बंसी काठ की नीरी प्राण रहित, और कृष्ण के मुखारविंद में बैठ करके उनके मुख के रस का सबको पान कर रहा है। गोपियों को तो इसी यही किसी को देख करके ईर्ष्या होती, किशोरी गोपियां उसको ईर्ष्या हो रही है, ये कुंडल को निकाल लो और बंसी को ले लो। इसलिए यहाँ पर करें भूषणों में जितने भी भूषण हैं, सनातन गोस्वामी करें आ इसी का सौभाग्य भी। Among all the ornaments, this kundal is most fortunate than all kinds of ornaments because it always kisses Krishna's cheek. इसके द्वारा यदि करें लसत कुंडलम, ये तो कुंडल के लिए कहा कि तो जब कृष्ण दौड़ रहे हैं तो उनके गले का हार दुल्यमान हो रहा है कि नहीं, उनके करधनी हिल रही होगी कि नहीं, मैया ने मोर पंख यहाँ लगा दिया वो भी तो इधर उधर हिल रहा होगा, पैर में नूपुर है वो रो रहे हैं तो उनके स्वर में स्वर मिला करके नूपुर भी बोल रहे हैं। So by this, he is selling for all ornaments, सब ornamentsों को सनातन गोस्वामी जी का है। बहुत गंभीर रूप से चिंतन करके ये सब बतला रहे हैं, किसी के दिमाग में ये सब चीज नहीं। इसलिए उपलक्षण में एक अलंकार का नाम लिया किंतु इसे समझो ये सभी अलंकार इसमें आ गए, सभी अलंकारों का परम सौभाग्य है। इसका तात्पर्य क्या है? यह तात्पर्य यह, कृष्ण का सौंदर्य उन कुंडलों से अलंकारों से बनता है, न कुंडल ही यहां पर शोभित हो रहे। लसत कुंडलम, लसत कुंडलम मैंने क्या, लसत कुंडल ही शोभा पा रहा है, नॉट ही इज मेकिंग कृष्ण बड़ी सुशोभित। कृष्ण के अंग की कांति को नहीं बढ़ा रहा, लसक मैंने लगा लो इधर में कुंडल के लिए, कुंडल ही शोभित हो रहा है, कृष्ण के गालों की वो चमक इस पर आ रहा है। है तो सोने का किंतु कृष्ण की श्याम झाई उसके ऊपर में पड़ करके वो मालूम होता है नील हो गया है, नील और स्वर्ण दोनों मिलकर के उसकी आभा रही है, इसलिए वो अत्यंत सुंदर लग रहा है। कोई भी चीज कृष्ण के अंगों में धारण करने पर वो अत्यंत सुंदर हो, यही उसका नील। कृष्ण ऐसे ही शोभित हैं, कुंडल नहीं रहे तो भी परम सुंदर है और कुंडल रहे तो कोई बात ही नहीं। इसलिए भूषण क्यों ऐसा कहा अर्थ, लसत शब्द का ऐसा अर्थ क्यों लिया, कृष्ण वो कुंडल के लिए शोभित होता है, इसलिए कि उन्होंने कहा है भूषणम भूषणंगम। श्रीमद् भागवत में कृष्ण को गोपियां ये उत्तर दे रही हैं, कृष्ण का रूप कैसा है, सुंदर, परम सुंदर से भी सुंदर, राम से भी सुंदर, बलदेव से भी सुंदर, समस्त अवतारों से भी सुंदर है, और उसमें भी यशोदानंदन से भी सुंदर है, श्री राम इत्यादि के सखा से भी अधिक सुंदर हैं। कौन? गोपियों के जो राधा नाथ, राधा कांत, राजकिहारी, गोपी कांत, ये और परम सुंदर हैं। इसलिए गोपियां इनके सौंदर्य को निंदा स्तुति के रूप में वर्णन कर रही हैं, ब्याज स्तुति के रूप में करें। काश्यं थे कल्पदायक वेणु भीत सम्मोहिता चरितान न चले त्रैह त्रैलोक्यम त्रैलोक्य सौभवम इदं च निरुक्ष रूपम जद गो द्रुम द्रुम मृगा पुलकान्नभिक्रम। श्रीमद् भागवत में बतला रहे हैं, हमने इसकी बहुत बार व्याख्या की है तो भी आ जाती है, चले ऐसे ही। गोपियां कृष्ण के पास में आई हैं। Your gopis are telling that you are so beautiful. We have come and left our varnasram dharma, our husband. It is due to you. You are guilty for this. We are not guilty. हम लोग इसके लिए दोषी नहीं हैं। काश्यम, कृष्ण ने कहा चले जाओ पतियों की सेवा करो, नहीं तो बड़ा अधर्म होगा। पति की जो सेवा नहीं करेगी, चाहे वो लंगड़ा लूल्हा, पैसा वाला नहीं, निर्धन भी रहे, किसी प्रकार से रहे, स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना है। यदि वो विमुख होती है और दूसरे पति के पास में जाती है तो व्यभिचारिणी होगी, लोक में परलोक में सर्वत्र ही वो दुखी रहेगी। इस लोक में भी निंदनीय है, परलोक में भी वो परलोक से च्युत हो जाएगी। इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए। इसे तुम लोग जाओ, तुम्हारा धर्म ये है। अच्छा, हमारा दर्शन कर लिया, ये दृश्य भी तुमने देखा, चंद्र उदित हो रहा है, प्रकृति एकदम लाल हो गई है, बहुत ही सुंदर जमुना का उपवन है, ये सब देख लिया, अब तुम लोग जाओ। ये हमको देखने के लिए ही तो आई, ठीक है तुम लोग लौट जाओ। विशेषकर जब धर्म का भय दिखलाया तब गोपियों ने कहा कायस्त्रियंते कल्पदायक वेणुभीत, आपने इतना सुंदर हमें ज्ञान दिया, आज तक ऐसा सुंदर ज्ञान देने वाला कोई नहीं रहा। पतियों की सेवा करनी चाहिए स्त्रियों को, ऐसा कौन समझाएगा, वहां आपके समान अब कोई गुरु नहीं है, अब हमने आपको ही गुरु बना लिया। जब गुरु बनाया तो पहले गुरु की पूजा, इसके बाद में
गुरु की
पूजा, इसलिए हमारी पूजा को आप ग्रहण करें। पहली तो बात ये। दूसरी बात, गीता में उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ करके, इसमें पति धर्म भी आता है, सभी कुछ हमारी ही सेवा करो। आपने कहा ये यथांग माम प्रवर्तन, इसमें भी सर्वत्र उन्होंने कहा है, यह हम सब जगत के धर्मों को छोड़ करके हमारी सेवा करो, तो हम तो वही करने आए हैं जैसा उपदेश दिया है। फिर भी आपने इतनी सुंदर शिक्षा दी। अच्छा, मान लिया कि हम लोग अपने पति व्रता से धर्म से भ्रष्ट होती हैं, इसी पर हम लोग गिर जाती हैं, फॉल डाउन फ्रॉम और पति व्रता धर्म से, लेडी सीट, यू आर गिल्टी फॉर दैट। आपने इतना सुंदर रूप क्यों धारण किया और उस सुंदर रूप में भी बंसी को धारण करके इतना सुंदर माधुर्य क्यों हम लोगों के कानों में डाला? आपके इस कुछ चीज को देख करके कायस्त्रियं, हम तो स्त्रियां हैं कोमल स्वभाव की, जल्दी से हम ज्ञान श्यान सब भूल जाती हैं, थोड़ा सा कोई स्नेह पाती हैं तो हम उधरी में चली जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं रूप के द्वारा। अरे हमारी बात तो छोड़ दो। ते कल्पदायत वेणु गीत, कल्पदायत माने मूर्छना, आरोह और अवरोह, मूर्छना से युक्त अपनी सुंदर मधुर बंसी के सप्तम स्वर से आप जो गान करते हैं और त्रैलोक्य सौभगम त्रैलोक्य के लिए शोभा स्वरूप सीता को भी लक्ष्मी जी को भी आकर्षित करने वाला श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहि समत जगत जनस्य श्यामस्य वाम भुजबद्ध तनुं कदाहं स्वामिन्दिरे विरल रूप। अरे लक्ष्मी जी इंदिरा नहीं है, वो इंदिरा नहीं है, इंदिरा कौन है? आप हैं, राधा जी के लिए कहा श्यामे रमा रमण वरिष्ठ, रमा के जो रमण नारायण उनसे सौंदर्यता में अत्यंत अधिक हैं, कौन? ये श्याम। और वो श्याम प्रेम में मत्त हो करके पागल हो करके अपने बाएं हाथ से इनको आलिंगन कर रखा है। श्यामी रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित, वो श्याम मोहित हो जाते हैं राधा जी के सब मोहित हो करके समस्त जगत जनस्य ऐसे जो श्याम हैं हे राधिके आप हमारे ऊपर में कृपा करें। ऐसा कृष्ण का सौंदर्य है, कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल दैट रमा रमन नारायण आल्सो वांट्स दैट रूप फॉर टू टेल अदर एंड लक्ष्मी कीपिंग अवे नारायण कम्स टू कृष्णा टू वर्शिप कृष्णा। इसलिए परम सुंदर है जब वो इस रूप को देख करके और बंसी की आवाज को सुन करके जद गो गो माने गाय गो की गो सभी एक गाय एक जानवर होकर के भी और आकर्षित होकर के कानों को एकदम खड़ी करके सुनती है, घासों का चरना भूल जाती है, उसके बछड़े दूध पीते 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 गले में अटक जाता है, दूध रह जाता है, न भीतर ले जाता है न बाहर, उसको समय नहीं, एकदम तन्मय हो जाता है। ऐसे कृष्ण को छोड़ करके दुर्भागा दुर्भागी दूसरों का भजन करते हैं, ऐसा प्रेम का मूर्ति कहीं, इसलिए उनका भजन करना चाहिए। तो गो द्रुम द्रुम माने पेड़ पेड़ पौधे जी, यहां बंसी की आवाज सुनी, कृष्ण का मुखारविंद देखा, ऐसे तंग करके खड़े हैं, उनकी डाले नीचे आ जाते हैं और वो फूलों से भर जाती हैं, हरा भरा हो जाता है, मानो पुष्पों को लेकर के अपने डाल रूपी हाथों से कृष्ण के चरणों में अंजलि से पुष्पांजलि दे रहा है। कितना सुंदर भाव, ये पेड़ ऐसे हो जाते हैं, पेड़ स्थिर है, ये भी जंगम हो जाता है चलने जैसा, जैसे किसके भाव आ जाए और आंखों से आंसू झरने लगते हैं प्रेम के मारे, पेड़ों से मधु धारा। और गोद्रुम दिज दिज माने जिनके दो पंख हैं, दिज दो बार जन्म, यहां पर दो जन्म से भी ये दो पंखों से ही था, ये चिड़िया आकाश में उड़ने वाली मनुष्यों से डरने वाले, कोई ज्ञान नहीं कुछ नहीं, और ये लोग भी अपना धर्म भूल करके चुपचाप कोई कदंब के पेड़ पर, कदंब पेड़ पर कौन? मयूर, कोई अनार की के ऊपर में, अनार पर कौन बैठते हैं? सारी सूप, और सारी बैठती हैं अंगूर के बेल पर, कबूतर कहां बैठते हैं? पीलू के पर पर। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये सब वर्णन किया है, और कैसे सुन करके उस वेणु की ध्वनि को और कृष्ण का रूप सुनकर श्रीमंत मिलित दृशो विगतान्नवाच रुकना बोलना भूल जाते हैं, और मानो ये वेद की प्रेम रूपी भागवत की डाल पर बैठे हुए ये ऋषि मुहूर्त से वो नहीं सुंदर ध्वनि करने वाला कोई सूप कोई पीक ऐसे ये सब ऋषि चुपचाप ऐसे देख रहे हैं। वो उड़ने वाले किंतु जड़ बन गए चलने वाले, ऐसा ये कृष्ण का मुखारविंद सुंदर या समस्त शरीर और वेणु गीत की ध्वनि उनको ऐसे बना देती है। चलने वाले को जड़, जड़ को चेतन, मृगा साधारण से मनुष्यों को देख करके भगने वाले जहां वेणु की ध्वनि सुना, धन्यासमूढ़ मतयो हिरण्य एता नंदनम उपात्त विचित्र वेशम, उपात्त विचित्र वेशम, अत्यंत सुंदर रूप दर्शन करके मुग्ध हो जाते हैं और प्रणय की भिक्षा मांगते हुए कृष्ण के निकट आकर के खड़ी हो जाती हैं और उनके पति पीछे से कृष्ण सार धारण करते बहुत सुंदर। इस तरह से मृगाकुलकांड विभ्रन नदी चेतन अचेतन धारा वाली वो रुक जाती है, पर्वत द्रवित हो जाता है एकदम द्रवित होकर के उसे मानो पसीने की बूंदे आने लगती है, सारी प्रकृति जड़ चेतन सब उसमें एंटी हो जाती है और विपापनम स्वच्छ स्वच्छ सौभगर दे परम पदम भूषण भूषण। ये पूरा श्लोक है, जन्म तलीलौपैकम माया बलम दर्श सैताग्रहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्भे परम पदम भूषणम।